ये रेडियो नेपाल है। अब सीमा शर्मा से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। सहकारी समस्या संबोधन के लिए सरकार द्वारा सहकारी संबंधी अध्यादेश जारी करने के लिए राष्ट्रपति समक्ष सिफारिश करने का निर्णय। कल शाम से देश के कई हिस्सों में बर्फबारी और बारिश होने की संभावना जताते हुए मौसम पूर्वानुमान महाशाखा ने ठंड से बचने के लिए आवश्यक सावधानी बरतने का किया अनुरोध। नीतिगत निर्णय प्रक्रिया में सहभागी कर्मचारियों को ट्रेड यूनियन में अबद्धता न देने पर नेपाली कांग्रेस और एमाले हुए सहमत। और सीरिया में नागरिकों की सुरक्षा में तैनात अधिकारियों पर हमला, 14 की मौत और 10 से अधिक घायल। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने सहकारी संबंधी कुछ नेपाल आईन को संशोधन करने के लिए बने अध्यादेश जारी करने के लिए राष्ट्रपति समक्ष सिफारिश करने का निर्णय किया है। पूछ 9 गते हुई मंत्रिपरिषद की बैठक के निर्णयों को साझा करने के लिए आज सिंह दरबार में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में सरकार के प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरूंग ने सहकारी समस्या के मद्देनजर तत्काल सहकारी संबंधी कुछ नेपाल आईन को संशोधन करने के लिए अध्यादेश जारी करने का सरकार ने निर्णय किया है। इसी तरह बैठक ने सवारी तथा यातायात व्यवस्था 10वां संशोधन नियमावली 2081 स्वीकृत करने के साथ ही परसा जिला के पोखरिया, जुमला जिला के सिंजा, नाराकोट और कपिलवस्तु जिले के बोडगांव में मालपोत तथा नापी कार्यालय स्थापना कर सेवा संचालन करने की स्वीकृति प्रदान करने लगायत निर्णय किए हैं। मंत्रिपरिषद बैठक ने नेपाल बीमा प्राधिकरण के अध्यक्ष तथा शिक्षक सेवा आयोग के एक महिला सहित 2 सदस्यों की नियुक्ति के लिए सिफारिश करने के लिए अलग अलग सिफारिश समिति गठन करने का निर्णय किया है। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के आयोजन में काठमांडू में नेपाल स्वास्थ्य सम्मेलन शुरू हुआ है। कल तक चलने वाले इस सम्मेलन का उद्देश्य साझेदारी को बढ़ावा देना, ज्ञान साझा करना और देश के स्वास्थ्य क्षेत्र की चुनौतियों पर चर्चा करना है। नेपाल स्वास्थ्य सम्मेलन 2024 नेपाल की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए नेपाली प्रवासियों को एक साथ लाना शीर्षक वाले सम्मेलन में स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री प्रदीप पौड़ेल ने कहा है कि जनशक्ति को देश में वापस कैसे लाया जाए, यह एक चुनौती है। मंत्री पौड़ेल ने कहा कि हालांकि विदेश में स्वास्थ्य क्षेत्र के कर्मियों को वापस लाने का मुद्दा चुनौतीपूर्ण है, लेकिन फिर भी सरकार कुशल कर्मियों को वापस लाने के लिए पहल करेगी। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन को चुनौती का सामना करने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी संस्थानों तथा व्यक्तियों को एकजुट होना चाहिए। वन तथा वातावरण मंत्रालय द्वारा आज काठमांडू में आयोजित 29वें विश्व जलवायु सम्मेलन के समीक्षा कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ओली ने इस बात पर जोर दिया है कि हमें प्रकृति को स्वच्छ रखने और इसकी दीर्घकालीन सुरक्षा के लिए मिलकर काम करना चाहिए। यह उल्लेख करते हुए कि सरकार जलवायु परिवर्तन की चुनौती का सामना करने के लिए नेतृत्व के साथ साथ जलवायु वित्त की व्यवस्था करेगी, उन्होंने कहा कि मानव निर्मित पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए प्रत्येक समुदाय को सचेत रहना चाहिए। प्रधानमंत्री ओली ने COP29 की समीक्षा के साथ ही COP30 की तैयारी में अभी से शुरू करने का अनुरोध किया है। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखा ने कहा है कि शुक्रवार शाम से देश के कई हिस्सों में बर्फबारी और बारिश हो सकती है। विभाग ने आज शाम बर्फीले मौसम पर विशेष बुलेटिन जारी करते हुए कहा कि पश्चिमी निम्न दबाव प्रणाली के कारण शुक्रवार शाम से देश के कई स्थानों पर आंशिक से सामान्य बारिश होने की संभावना है। इस प्रणाली के कारण शुक्रवार दोपहर से शनिवार तक सुदूर पश्चिम और कर्णाली प्रदेशों के अधिकांश ऊंचे पहाड़ी और हिमालयी क्षेत्र और गंडकी, बागमती और कोसी प्रदेश की ऊंची घाटियां प्रभावित होंगी। बर्फबारी और बारिश के वजह से ठंड बढ़ने की बात बताते हुए आवश्यक सतर्कता अपनाने का महाशाखा ने सभी से अनुरोध किया है। सत्ता साझेदार दल नेकपा एमाले और नेपाली कांग्रेस ने नीतिगत निर्णय के प्रक्रिया में सहभागी कर्मचारियों को ट्रेड यूनियन में अबद्धता न देने पर सहमत हुए हैं। प्रतिनिधि सभा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति की आज की बैठक में संघीय निजामती सेवा का गठन, संचालन और सेवा के शर्त संबंध में व्यवस्था करने के लिए बने विधेयक ऊपर के विचार विमर्श में सत्ता साझेदार दलों के मुख्य सचेतक और प्रमुख सचेतक ने कहा है कि नीतिगत निर्णय में सहभागी होने वाले कर्मचारियों को ट्रेड यूनियन के आबद्धता से दूर रखना उचित होगा। नेकपा एमाले के मुख्य सचेतक महेश बर्तौला ने कहा है कि नेपाल के राजनीतिक परिवर्तन में कर्मचारी ट्रेड यूनियन की भूमिका का सम्मान करते आज के संदर्भ में ट्रेड यूनियन की व्यवस्था में फर्क ढंग से सोचना चाहिए। उन्होंने कहा कि उपसचिव और सहसचिव बनने के लिए शाखा अधिकृत सेवा प्रवाह के जिम्मेवारी कम रहे कार्यालय चुनने की प्रवृत्ति का अंत होना चाहिए। नेपाली कांग्रेस के प्रमुख सचेतक श्याम कुमार घिमिरे ने कहा है कि संवैधानिक आयोग कूटनीतिक नियोग लगायत संस्था पूर्व कर्मचारी का क्लब जैसे दिखने का जिक्र करते हुए अवकाश प्राप्त कर्मचारी का अन्य निकायों में पुनः नियुक्ति के लिए कूलिंग पीरियड रखना चाहिए। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। अब कुछ देर विज्ञापन।
हजुर दर्शन,
भाग्यवानी बाबू, राम्ररी आइपुग्नु भयो नि।
हजुर राम्ररी पुगे। ऊ चाहिँ मेरो कलेजको बेस्ट फ्रेन्ड।
नमस्ते बाबुजू।
नमस्ते, आउनु न भित्रै।
हुन्छ बाबुजू।
अनि दादा त अफिस गइसक्नु भयो होला है?
उहाँ त बिहानै हो। हुन्छ, तपाईँहरू फ्रेस हुँदै गर्नु न, म खाना तयार गर्दै गर्छु है।
हस् हस् भाउजू।
ओए, वाइफाई होला नि, पासवर्ड माग्न।
हे, त पनि एनटीसी को सस्तो डे प्याक छँदैछ नि।
ए हो र,
एनटीसी को डे प्याक लिन *14## डायल गर्न।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाँकी समाचार। गृहमंत्री रमेश लेखक ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण प्राकृतिक प्रकोप को और भी पेचीला बनाते जा रहा है। काठमांडू में आज से शुरू हुए तीसरा राष्ट्रीय विपद जोखिम न्यूनीकरण सम्मेलन के उद्घाटन कार्यक्रम में गृहमंत्री लेखक ने कहा कि संघ से लेकर स्थानीय तहों के वार्डों तक विपद जोखिम न्यूनीकरण संबंधी संरचना को मजबूत बनाना आवश्यक है। दैलेख में जारी पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण के काम अंतिम चरण में पहुंची है। खानि तथा भूगर्भ विभाग के मुताबिक कल शाम बुधवार से 3930 मीटर ड्रिलिंग संपन्न हो चुकी है। अब 70 मीटर मात्र खनना बाकी है। बता दें कि दैलेख की भैरवी गांव पालिका वार्ड नंबर 1 जलजले क्षेत्र में बीते बैसाख 28 गते से पेट्रोलियम पदार्थ और प्राकृतिक गैस अन्वेषण के लिए ड्रिलिंग प्रारंभ हुआ था। विभाग के पेट्रोलियम परियोजना प्रमुख गणेश नाथ त्रिपाठी के मुताबिक इसी महीना ड्रिलिंग का काम पूरा होने के लक्ष्य के साथ काम हो रही है। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग ने संचार क्षेत्र को गरिमामय एवं व्यवस्थित बनाने का अनुरोध किया है। आज मंत्रालय में नेपाल पत्रकार महासंघ के नवनिर्वाचित कार्य समिति के पदाधिकारियों को बधाई तथा शुभकामनाएं देते हुए मंत्री गुरुंग ने पत्रकारिता को स्वतंत्र और आत्मनियामक बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। मंत्री गुरुंग ने बताया कि पत्रकारिता को और अधिक व्यवस्थित और गरिमापूर्ण बनाने के लिए विधेयक का मसौदा तैयार किया जा रहा है। मंत्री गुरुंग ने कहा कि पत्रकारिता का पेशा जोखिम भरा और अस्थिर है, इसलिए वह इसे और अधिक व्यवस्थित बनाने के लिए सहयोग करने के लिए तैयार है। इसी तरह संचार मंत्रालय में गोरखा पत्र संस्था द्वारा शुरू की गई बांबू राय भाषा का उद्घाटन करते हुए मंत्री गुरुंग ने कहा कि केवल राजनीति में ही नहीं बल्कि समाज के हर क्षेत्र में समावेशिता अपनाई जानी चाहिए। संघीय संसद सचिवालय ने 39 देशों में संसदीय मैत्री समूह गठित किया है। आज संसदीय मैत्री समूह के सिंह दरबार में हुए संयुक्त बैठक में प्रतिनिधि सभा के सभामुख देवराज घिमिरे ने कहा कि विभिन्न 41 देशों में से 39 देशों के मैत्री समूह का संयोजक तय की गई है। सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपाल के कार्यकारी अध्यक्ष डॉ महेन्द्र विष्ट ने कहा कि जनता केन्द्रित विषय वस्तु के प्रसारण को प्राथमिकता पर जोर देकर आगे बढ़ना चाहिए। आज रेडियो नेपाल में क्रियाशील विभिन्न संगठन द्वारा आयोजित बधाई तथा स्वागत कार्यक्रम में कार्यकारी अध्यक्ष डॉ विष्ट ने कहा कि सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपाल पीएसबी के संक्रमणकालीन अवस्था को छोटा करने के लिए सभी को प्रभावकारी रूप से जिम्मेदारी वहन करना होगा। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। सीरिया के उत्तर पश्चिमी प्रांत टार्टर्स में घात लगाकर किए गए हमले में अंतरिम आंतरिक मंत्रालय के 14 अधिकारी मारे गए और 10 अन्य घायल हो गए। अंतरिम सरकार के मंत्री मोहम्मद अब्दुल रहमान ने यह जानकारी दी। मंत्रालय ने कहा कि मारे गए अधिकारी नागरिकों की सुरक्षा में तैनात थे। इस संबंध और कोई विवरण नहीं दिया गया है। इससे पहले बताया गया था कि टार्टर्स प्रांत में हयात तहरीर अल शाम के नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन के स्थानीय सशस्त्र निवासियों और सुरक्षाकर्मियों के बीच हिंसक झड़पें हुई। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट के अनुसार लड़ाई खारबेट अल मज्जा गांव में शुरू हुई, जब स्थानीय लोगों ने सुरक्षा बलों की ओर से घर की जांच का विरोध किया। सशस्त्र निवासियों ने एसटीएस से संबंधित एक वाहन में आग लगा दी। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 19.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सहकारी समस्या संबोधन के लिए सरकार द्वारा सहकारी संबंधी अध्यादेश जारी करने के लिए राष्ट्रपति समक्ष सिफारिश करने का निर्णय। कल शाम से देश के कई हिस्सों में बर्फबारी और बारिश होने की संभावना जताते हुए मौसम पूर्वानुमान महाशाखा ने ठंड से बचने के लिए आवश्यक सावधानी बरतने का किया अनुरोध। नीतिगत निर्णय प्रक्रिया में सहभागी कर्मचारियों को ट्रेड यूनियन में आबद्धता न देने पर नेपाली कांग्रेस और एमाले हुए सहमत। और सीरिया में नागरिकों की सुरक्षा में तैनात अधिकारियों पर हमला, 14 की मौत और 10 से अधिक घायल। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।